ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन का अंतिम परिणाम हुआ सार्वजनिक। 16 सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और 2 सदस्य राजपा नेपाल की ओर से हुए निर्वाचित। देश को समृद्ध बनाने के राष्ट्रीय अभियान में राज्य के सभी निकायों का एकजुट होकर काम करने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया आग्रह। साझा यातायात को इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए दिए गए 3 अरब रुपए ब्याज सहित वापस लेने का सरकार ने किया निर्णय। और चीन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 17 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा चुनाव सदस्य चुनाव की मतगणना शुरू पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय सभा सदस्यों के महिला, दलित, अपांग या अल्पसंख्यक और अन्य समूह समेत कुल 18 रिक्त पदों के लिए 45 प्रतिस्पर्धी चुनावी मैदान में थे। मतगणना के अंतिम परिणाम अनुसार प्रदेश नंबर 1 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की महिला उम्मीदवार इंदिरा देवी गौतम विजयी हुई हैं और नेकपा के ही दलित उम्मीदवार गोपी बहादुर साकी अछामी और अन्य की तरफ से देवेंद्र दाहाल विजयी हुए हैं। इसी तरह प्रदेश नंबर 2 में नेकपा की महिला उम्मीदवार तुलसा कुमारी दाहाल, दलित से नेकपा के ही राधेश्याम पासवान, अपांग या अल्पसंख्यक समूह से राजपा नेपाल के शेखर कुमार सिंह और अन्य में राजपा नेपाल के ही मृगेंद्र कुमार यादव ने जीत दर्ज की है। बागमती प्रदेश में नेकपा से गंगा कुमारी बिलवा से और बेदुराम भूसाल विजयी हुए हैं। इसी तरह गंडकी प्रदेश में नेकपा की भगवती न्योपाने और नारायण कादी श्रेष्ठ, प्रदेश नंबर 5 में नेकपा की विमला घिमिरे, जगत प्रसाद शर्मा और गोपाल भट्टराय विजयी हुए हैं। दूसरी तरफ कर्नाली प्रदेश में नेकपा की सुमित्रा बीसी और माया प्रसाद शर्मा और सुदूर पश्चिम प्रदेश में नेकपा की शारदा देवी भट्ट और तारा मान स्वार को जीत मिली है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश में सुशासन कायम कर विकास और समृद्धि हासिल करने के सरकार के अभियान को पूरा करने के लिए राज्य के सभी निकायों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सशस्त्र प्रहरी बल के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश को गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन से मुक्त कर आधुनिक देश के रूप में विकास करने के लिए राज्य के सभी निकायों और नागरिक समाज को अपनी अपनी जगह से योगदान पहुंचाने की जरूरत है। राजनीतिक परिवर्तन को संस्थागत करते हुए संविधान का क्रियान्वयन करने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार के कंधे पर होने की बात बताते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सुशासन और कानूनी राज्य स्थापित करने की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित है। उन्होंने आगे कहा कि सशस्त्र प्रहरी बल के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। साझा यातायात सहकारी संस्था को इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए सरकार द्वारा शेयर से मिलने वाले 3 अरब रुपए ब्याज सहित वापस लेने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसी माह 6 गते मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा किए गए निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकुटा ने इस बात की जानकारी दी। बैठक में इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय को सैद्धांतिक सहमति देने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि इसके लिए अर्थ मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय ने 3 अरब रुपए मुहैया कराए थे। सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा सुविधा संबंधी मापदंड 2076 को स्वीकृत किया है। सरकार ने तेहरथुम जिले में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में गतिविधि करने वाले स्वर्गीय नेत्र प्रसाद गुरागाई का 2019 कार्तिक 29 गते पुलिस की गोली लगने से मौत हुई थी। उनके योगदान की कदर करते हुए सरकार ने उनको राष्ट्रीय शहीद घोषणा करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने सुनकोशी मरीन डायवर्जन बहुउद्देश्य परियोजना को राष्ट्रीय गौरव की परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने की स्वीकृति देने के साथ ही परियोजना के लिए स्रोत सुनिश्चित कर क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है। उपप्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने समाज को एकताबद्ध बनाने में गीत संगीत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। स्वर किन्नरी तारा देवी के 14वें स्मृति दिवस पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरेल ने कहा कि स्वर्गीय तारा देवी लगायत गायक गायिकाओं के गाय गीत देश की संपत्ति है और इसका संरक्षण और संवर्धन करना राज्य का कर्तव्य है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
भाउजू दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि
हजुर राम्ररी पुगे ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड
नमस्ते भाउजू
नमस्ते आउनु न भित्रै
हुन्छ भाउजू
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है
उहाँ त बिहानै हो हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न म खाना तयार गर्दै गर्छु है
हस् हस् भाउजू
ओए वाइफाई होला नि पासवर्ड माग्न
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि
ए हो र
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
अब बाकी समाचार पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव ने कहा कि गणतंत्र की रक्षा करते हुए देश को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने का दायित्व संपूर्ण देशवासियों का है वीरगंज की पीपरा में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति यादव ने कहा कि राजतंत्र विरुद्ध के आंदोलन के पश्चात देश लोकतांत्रिक गणतंत्र के युग में प्रवेश कर चुका है इसलिए सभी राजनीतिक दलों वर्गों समुदायों का एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है नेपाल में भ्रष्टाचार नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार आया है इसकी जानकारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 को सार्वजनिक किया है जिसमें नेपाल 11 स्थान ऊपर चढ़ते हुए 113वें स्थान में पहुंचा है इस सूची में विश्व के 180 देशों को शामिल किया गया है 2019 में विश्व में सबसे कम भ्रष्टाचार होने वाले देशों में डेनमार्क और सबसे अधिक भ्रष्टाचार करने वाले देशों में सोमालिया का नाम शामिल है सत्य निरूपण आयोग तथा मेल मिलाप आयोग और लापता छानबीन आयोग के पदाधिकारियों ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है सर्वोच्च अदालत में आयोजित समारोह में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ने सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ गणेश दत्त भट्ट और लापता छानबीन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज सुवेदी को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई राष्ट्रसभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसनान ने आर्थिक समृद्धि के लिए निवेश करने का व्यवसायियों से आग्रह किया है गंडकी प्रदेश स्तरीय छठवें पर्वत महोत्सव का आज कुशमा बाजार में उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष तिमिलसनान ने कहा कि सिर्फ सरकार की कोशिशों से ही देश समृद्ध नहीं बनेगा उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों को उद्योग और कल कारखाने में निवेश करना जरूरी है अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार चीन समेत दुनिया के कई दूसरे देशों में फैल चुके कोरोना वायरस को लेकर भारत में भी एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली समेत देश के 7 हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है ताकि अगर चीन या हांगकांग से लौटे किसी शख्स में संक्रमण के असर दिखते हैं तो उसकी तुरंत जांच कराई जा सके इस वायरस को लेकर सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये इंसानों से इंसानों में फैलता है चीन में अब तक इसकी वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा लोगों में इसका संक्रमण पाया गया है माना जा रहा है कि इस वायरस के संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन का अंतिम परिणाम आज हुआ सार्वजनिक 16 सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और 2 सदस्य राजपा नेपाल की ओर से हुए निर्वाचित देश को समृद्ध बनाने के राष्ट्रीय अभियान में राज्य के सभी निकायों का एकजुट होकर काम करने पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया आग्रह और साझा यातायात सहकारी संस्था को इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए गए 3 अरब रूपये ब्याज सहित वापस लेने का सरकार ने लिया निर्णय और चीन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 17 लोगों की हुई मौत इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए सुनते रहिए रेडियो नेपाल शुभ रात्रि